नमस्कार भारत, आज 10 अप्रैल दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। मिस्र में दो चर्चों पर हमले के बाद राष्ट्रपति अलसीसी ने देश में 3 महीने के लिए लगाया आपातकाल। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत, केवल 6.5% मतदान।
ये लोकतंत्र का एक सीधा साधा मजाक है और इसमें न्यू दिल्ली से लेके कश्मीर का अमर तक सबको बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि ये क्या है।
पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा से कानून व्यवस्था को लेकर घेरे में आदित्यनाथ योगी की सरकार।
जो स्थिति बनी हुई है उससे पिछले 15-20 दिन में ये आभास हो चला है कि कानून व्यवस्था जो है नियंत्रण के बाहर है।
होगी वसतुल्ला खान की डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। मिस्र में ईसाइयों के चर्चों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में 45 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने 3 महीनों के लिए आपातकाल लगा दिया है। राष्ट्रपति ने देश के अहम प्रतिष्ठानों पर भी सेना तैनात कर दी है। रविवार को हुए हमलों की जिम्मेदारी तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस्लामिक स्टेट मिस्र में पहले भी हमले करता रहा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति से देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को बंद न करने के लिए लाए जा रहे कानून पर हस्ताक्षर न करने की अपील की है। विक्टर ऑर्बान की दक्षिणपंथी सरकार के नए नियमों के तहत द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी डिप्लोमा नहीं दे सकेगी क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अमरीका में पंजीकृत है। विधेयक को संसद से पहले ही पारित करा लिया गया है। बुडापेस्ट में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ये कदम देश में प्रवासियों के अधिकारों की बात करने वाले संगठनों पर दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा है। प्रदर्शन के आयोजकों में से एक कॉर्नेल क्लॉफस्टीन का कहना है कि ये प्रस्ताव देश में उदारवादी संस्थाओं के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा,
The current Hungarian government wants to silence pretty much everyone.
सरकार हर उस व्यक्ति को खामोश करना चाहती है जो सरकार के विपरीत सोचता है, जो उनके जैसा नहीं सोचता, जो स्वतंत्र सोच रखता है और जो उदारवादी हो सकता है, वामपंथी हो सकता है या फिर ये दोनों ही हो सकता है। वो बस सबको खामोश करना चाहते हैं और सरकार को लगता है कि ऐसे लोगों का अड्डा यूरोपियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए ही वो इसे बंद करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने चेन्नई के आरके नगर सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को मतदाताओं को पैसे बांटे जाने के सबूत मिलने के बाद रद्द कर दिया है। दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की इस सीट पर एक एक वोट के लिए 4,000 रुपये देने का दावा करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन औद्योगिक देशों के समूह G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे हैं। आज होने वाली वार्ता में रूस पर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से दूरी बनाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। मंगलवार को मॉस्को पहुंच रहे टिलरसन ने सीरिया में रासायनिक हमला रोकने में नाकाम रहने पर रूस की आलोचना की है। इस रासायनिक हमले के बाद अमरीका ने सीरिया पर मिसाइल हमले किए हैं। टिलरसन ने जोर देकर यह भी कहा है कि इस्लामिक स्टेट को हराना अमरीका की पहली प्राथमिकता है। कोलंबिया की सेना का कहना है कि बीते साल फार्क के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते का विरोध करने वाले वामपंथी विद्रोही गुट के सदस्यों ने देश के दक्षिण पूर्व में एक सैनिक की हत्या कर दी है। सेना का कहना है कि विद्रोहियों ने एक्सप्लोजिव डिवाइस के जरिए सेना के एक वाहन को निशाना बनाया है। इस हमले में 4 अन्य सैनिक घायल भी हुए हैं। राष्ट्रपति वान मैनवेल सांतोस ने इस हमले की आलोचना की है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद की दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन लेपेन ने कहा है कि 1942 में पेरिस में 13,000 यहूदियों को नाजी डेथ कैंपों में भेजे जाने के लिए फ्रांस जिम्मेदार नहीं है। लेपेन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि फ्रांस की तत्कालीन वैध सरकार लंदन में निर्वासित थी और इसलिए वो इसमें शामिल नहीं थी। यहूदी समूहों ने लेपेन के इस बयान की आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। मिस्र में दो चर्चों पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति फतह अल सीसी ने 3 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया है और देश भर में सेना तैनात करने का आदेश दिया है। ईस्टर से पहले कॉप्टिक ईसाइयों को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं दिलनवाज पाशा।
टीवी पर राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश में राष्ट्रपति सीसी ने लोगों से एकजुटता दिखाने की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा बल हमलों में शामिल लोगों को पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने चरमपंथ से निपटने के लिए नए कदम उठाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा, मिस्र में चरमपंथ और आतंकवाद से निपटने के लिए आज एक उच्च समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। इस नए कानून का उद्देश्य इस समिति को हालात नियंत्रण में करने के लिए जरूरी कदम उठाने की ताकतें देना होगा। राष्ट्रपति सीसी ने देश भर में सेना लगाने का ऐलान भी किया है। रविवार को अलेक्जेंड्रिया में सेंट मार्क कॉप्टिक चर्च के बाहर एक धमाका हुआ और इसमें 16 लोग मारे गए। इस हमले में आत्मघाती हमलावर को रोकने की कोशिश करने वाले एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। पुलिसकर्मी ने आत्मघाती हमलावर को चर्च में घुसने से रोक दिया था। इससे पहले नील डेल्टा में तांता शहर के सेंट जॉर्ज कॉप्टिक चर्च में धमाका हुआ था और इसमें 29 लोग मारे गए। इस हमले में घायल एडवर्ड ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा, नौ बजे ही थे, प्रार्थनाएं हो रही थी और सभी लोग अपनी जगहों पर बैठे थे। हालांकि कतार पूरी भरी नहीं थी, मैं सबसे आगे बैठा था। अचानक अंधेरा छा गया, मैं बेहोश सा हो गया। किसी ने मुझे मेरी सीट से उठाया। कुछ सेकंड बाद मैं उठा, मेरे चारों ओर लाशें थीं। मैं बेंचों से कूदता हुआ किनारे के दरवाजे से बाहर आया। चीख पुकार मची थी। मैंने सुना लोग कह रहे थे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने ईसाइयों को निशाना बनाकर चर्च पर किए गए इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट पहले भी मिस्र में ईसाइयों को निशाना बनाकर हमले करता रहा है। ये हमले खासकर 2013 के बाद और बड़े हैं, जब सेना ने चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर रविवार को हुए उपचुनाव में हिंसा के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कई लोग इस हिंसा में जख्मी हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। आज और कल अलगाववादियों ने घाटी में बंद का आह्वान किया है। घाटी के ताज़ा हालात की जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
जी, ताज़ा हालात ये है कि वो 20 से ज्यादा घायल लोग थे कल की दिन भर की स्थिति में। कल तो शाम तक जो है 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, तो जख्मियों में से और 2 लोग जो है उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से ऑफिशियली ये इसकी पुष्टि हो चुकी है कि 8 लोग कल की इस हिंसक स्थिति में जो है वो मारे जा चुके हैं। और पहले ही अलगाववादियों ने बंद का आह्वान कर रखा है 2 दिन के लिए, आज और कल। और आज पूरी घाटी में जो है वो इन मृत्युओं के खिलाफ जो है वो बंद का आह्वान किया जा रहा है।
रियाज, बुधवार को जो चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है?
जी देखें, कल जो कुछ भी हुआ ये सेंट्रल कश्मीर में बड़गाम, गांधरबल और श्रीनगर को तो वैसे भी शांतिपूर्वक जिले कहा जाता था और यहाँ अभी तक वो लहर नहीं पहुंची थी जो दक्षिणी कश्मीर में थी पिछले 1-2 वर्ष से। लेकिन यहाँ जिस तरह की स्थिति बन गई तो उससे लगता है कि दक्षिणी कश्मीर जो पहले ही जहाँ पे चरमपंथी भी सक्रिय हैं और जहाँ पे प्रदर्शनकारी भी बहुत होस्टाइल हैं, तो उससे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। वहाँ पे पहले से ही सुरक्षा के अधिकतम बंदोबस्त किए जा रहे हैं और बहुत ही अननर्व हो चुकी है सरकार, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरह से लोग आकर वो मॉब अटैक्स होते हैं पोलिंग स्टेशन पे, तो कल भी 50 पोलिंग स्टेशन को अटैक किया गया। तो चूंकि दक्षिणी कश्मीर में एक तो जनसंख्या भी ज्यादा है और वो ज्यादा फैला हुआ इलाका है कल के मुकाबले में, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए।
जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात की जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में 12,60,000 मतदाता हैं, उनमें से केवल 80,000 लोगों ने वोट डाला। मतदान प्रतिशत रहा सिर्फ 6.5%। इतनी कम संख्या में वोट डालकर भारत प्रशासित कश्मीर के लोग आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, यही समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर से बात की।
देखिए, ये जो कुछ देखने को मिला इसको हम आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, अकेले में नहीं देखेंगे, इसको हम थोड़ा ब्रॉडर कश्मीर इशू के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। वो ये है कि आपने 2016 का एजिटेशन देखा, 90 से ज्यादा लोग मारे गए एजिटेशन में, कई महीनों तक यहाँ का सारा काम काज सब कुछ ठप हो गया, हड़तालें रही, एजिटेशन रहा, प्रोटेस्ट रहे, उसके बाद कोई भी मूवमेंट कश्मीर इशू को लेकर नहीं हुई। क्योंकि हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर इशू के हवाले से देखें तो जो भी सरकारें आज तक दिल्ली में आई हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार ने कुछ न कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट किया कश्मीर को लेके, चाहे वो LOC ट्रेड खोलना हो, LOC ट्रैफिक खोलना हो, चाहे वो पाकिस्तान से बात करना हो, चाहे वो अदर CBMs हो। लेकिन ये सरकार बनने के बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद से कश्मीर इशू को लेके कोई भी मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हुआ है। उस चीज को लेके 2016 का एजिटेशन लेके उसके बाद से जो कुछ ऑल ओवर इंडिया हो रहा है उसको लेके कश्मीर में एक इनसिक्योरिटी सी फील कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से गुस्सा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर को इशू को इग्नोर कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीरी लोगों के एस्पिरेशंस को, उनकी जो भी पॉलिटिकल डिमांड्स है उनको लेके सीरियस नहीं है। उस इशू को लेके यहाँ के यूथ में बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो गुस्सा हमने 2016 के एजिटेशन में देखा, लेकिन बाद में लगा कि शायद गुस्सा कम हो गया है। हालांकि गुस्सा कम नहीं हुआ था, 7-8 महीने के एजिटेशन के बाद थोड़ी सी थकान आ गई थी, और अब लगता है कि जैसे स्प्रिंग आ रहा है तो स्प्रिंग के साथ ही लोगों की थकान दूर हो रही है, वो एक बार फिर बाहर निकल रहे हैं अपना गुस्सा दिखाने के लिए।
बशीर साहब, ये बताइए कि जितनी कम वोटिंग हुई है,
जी,
इतनी कम वोटिंग के बाद जो भी नुमाइंदा चुना जाएगा, आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र का माहौल उड़ाने वाली बात होगी, मजाक उड़ाने वाली बात होगी?
ये लोकतंत्र का मजाक होगा, क्योंकि देखिए आप 7% वोट लोग वोट कर रहे हैं, और 7% मीन्स आपके 93% लोग वोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 7% वोट कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का एक सीधा साधा मजाक है, और इसमें न्यू दिल्ली से लेके कश्मीर गवर्नमेंट तक सबको बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि ये क्या है। सो अगर सिर्फ 7% लोग आपके वोट कर रहे हैं और जो भी बंदा चुन के आता है, मुझे लगता है मॉरली उस बंदे का कोई हक नहीं है कि वो क्लेम करे कि उसको लोगों ने इलेक्ट किया है, उसको लोगों ने चुना है।
ये थे श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार बशीर मंजर। और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों में जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा की खबर को किस तरह से कवर किया गया है, ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। जी दिलनवाज
जी अमरेश, साथ ही हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान से प्रकाशित अखबारों ने इस खबर को कैसे लिया है। और रोजनामा एक्सप्रेस लिखता है, कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग में 8 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी, पाकिस्तान का सख्त विरोध। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय फौज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी नौजवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। अखबार ने पत्थरबाजों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। वहीं पाकिस्तान से ही प्रकाशित रोजनामा दुनिया ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, भारतीय फौज की खुली दहशतगर्दी।
जी,
और यह खबर पाकिस्तान के सभी अखबारों में पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित है। इसके अलावा अगर मैं भारत से प्रकाशित अखबारों की बात करूं तो सभी अखबारों की बड़ी खबर यही है। हिंदुस्तान टाइम्स ने तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें कुछ नौजवान सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं। एक अन्य अखबार अमर उजाला में जली हुई बस की तस्वीर है। हालांकि अलग अलग अखबारों में मृतकों की संख्या अलग अलग है। महबूबा मुफ्ती का बयान अमर उजाला ने प्रकाशित किया है जिसमें वो कह रही हैं कि खून खराबे से दुखी हूँ। इसके अलावा एक और खबर जो आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है गायों को लेकर मोहन भागवत का बयान। RSS प्रमुख ने कहा है कि गोहत्या के खिलाफ देश भर में बने समान कानून, ये अमर उजाला ने लिखा है। इसके अलावा ये लगभग इसी शीर्षक से ये खबर सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। कुछ अखबारों ने उनके बयान के उस हिस्से को भी शीर्षक बनाया है जिसमें उन्होंने जो कथित गोरक्षक हैं उनकी गुंडागर्दी पर दुख जाहिर किया है। इसके अलावा एक और खबर हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर है। इसके मुताबिक दिल्ली से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में कि बिहार में मुगलसराय और बक्सर स्टेशनों के बीच लूटपाट हुई है, 3 कोचों में लूटपाट की गई है। तो राजधानी प्रीमियम ट्रेन है इसमें लूटपाट की खबर चिंताजनक है। इसके अलावा जो आधार कार्ड को पैन कार्ड और आधार कार्ड को ओटीपी के जरिए जोड़ने से जुड़ी खबर भी सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। लोग ओटीपी के जरिए आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से जोड़ सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की समीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तमाम हिदायतों के बावजूद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। यहां तक कि पिछले दो दिन के भीतर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें हुई और दो पुलिसकर्मियों की हत्या तक हो चुकी है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी पुरानी सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को न संभाल पाने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के साथ समीर आत्मज मिश्र।
मेरठ में बीजेपी के नेता संजय त्यागी और उनके साथी कार्यकर्ता पुलिस से कुछ इस तरह उलझ रहे हैं। पुलिस वालों की गलती ये थी कि उन्होंने काली फिल्म और हूटर लगे होने पर नेताजी के बेटे की गाड़ी का चालान कर दिया था। उसके बाद देर तक न सिर्फ सड़क पर हंगामा होता रहा बल्कि थाने पर भी नारेबाजी और झड़प होती रही। इस दौरान आरोप ये भी है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा गया और कई पुलिसकर्मियों की वर्दियां फाड़ दी गईं। मेरठ के नगर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी घटना की वजह बताते हैं।
पुलिस वालों ने इंसिस्ट करके गाड़ी वाड़ी के पेपर्स वगैरह चेक किए, फोटो उतरवाने की बात की, इतने में उसने अपने फादर को फोन कर दिया था तो फादर उससे चले आए और लड़के को जब गाड़ी में बिठाया जाने लगा तो काफी खींचतान की उन्होंने। फिर मौके पे हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने फिर भीड़ को समझा बुझा करके शांत किया। हमको ये बताया कि लॉ कार्रवाई है वो तो करनी ही है।
पुलिस के साथ झड़प और हमले की ये वानगी भर है। ज्यादातर जगहों पर ये झड़पें बीजेपी नेताओं के साथ हो रही हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की बार बार की चेतावनी के बावजूद कार्यकर्ता जोश में होश खो रहे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले दो दिनों के भीतर ही ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। प्रतापगढ़ में एक पुलिस कांस्टेबल की दिन में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिरोजाबाद में कुछ लोगों ने एक बड़ी गाड़ी से एक सिपाही को कुचल डाला। बताया गया कि ऐसा खनन माफिया के इशारे पर किया गया। गोरखपुर में रविवार को ही टोल प्लाजा के पास एक व्यक्ति को गाड़ी में बांधकर जिंदा जला दिया गया। मेरठ में जिस बीजेपी नेता संजय त्यागी की पुलिस वालों से झड़प हुई, उनका आरोप है कि अधिकारी अभी भी पुरानी सरकार के हमदर्द बने हुए हैं।
मुझे लग रहा है जो इनका सत्ता का नशा था सपा गवर्नमेंट का, वो नशा इनका अभी तक उतरा नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाना, ये मुझे लगता है इनका ये पेशा है।
लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी इन घटनाओं को राज्य सरकार की नाकामी बताते हैं।
उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है उससे पिछले 15-20 दिन में ये आभास हो चला है कि कानून व्यवस्था जो है नियंत्रण के बाहर है।
सरकार को काम का संभाले अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और कानून व्यवस्था उसकी प्राथमिकता रही है। बावजूद इसके आए दिन हत्या, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। आखिर क्यों नहीं रुक पा रही हैं ये घटनाएं? इस सवाल के जवाब में राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
देखिए कहीं पर भी अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसको इजाजत नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कहीं कोई गलत काम कर रहा है तो निश्चित रूप से कानून से वो बचेगा नहीं।
दरअसल ये सब कुछ तब हो रहा है जबकि मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कई बार ऐसा न करने की चेतावनी दे चुके हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी के लिए पार्टी विद डिफरेंस का नारा भूल चुके इन कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री गवर्नमेंट विद डिफरेंस का पाठ पढ़ा पाते हैं या नहीं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सदियों से अमन और भाईचारे का पैगाम देती रही है, मगर दरगाह में सज्जादा नशीन की गद्दी को लेकर दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन और उनके भाई अलाउद्दीन आलमी के बीच पैदा हुआ विवाद गहराता जा रहा है। आलमी ने खुद को सज्जादा नशीन घोषित कर दिया है लेकिन दरगाह प्रबंधन के मुताबिक आलमी के दावे का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
यूं तो वहां आस्था में डूबी अकीदतमंदों की भीड़ और सूफियाना कलाम से फिजा सरोबार रहती है, मगर उस दिन मंजर कुछ और ही था। सज्जादा नशीन आबेदीन के भाई आलमी ने अपने ही भाई आबेदीन की जगह खुद को गद्दी नशीन घोषित कर दिया है। वे कहते हैं आबेदीन के 3 तलाक और दूसरे बयानों के बाद वे मुसलमान होने का हक खो चुके हैं।
जो आदमी मुसलमान नहीं रहा वो गद्दी सज्जादा नशीन नहीं रह सकता, ये तयशुदा बात है। दादा रहमतुल्लाह की जो गद्दी जो गद्दी है, मुबारक गद्दी, पवित्र गद्दी, पाकीज़ा गद्दी, उस गद्दी में खड़ा होकर मैंने जो है ये डिक्लेयर किया कि ये जैनुल आबेदीन जो है आज से इसको दरगाह दीवान और सज्जादा नशीन के पद से मैं हटाता हूँ। मैं अपने आप को सैयद अलाउद्दीन अलीमी चिश्ती आज से दरगाह दीवान और सज्जादा नशीन बन गया बनाता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ।
दरगाह प्रबंधन के एक अधिकारी ने BBC से कहा आलमी के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। प्रबंधन के अनुसार आबेदीन ही विधिवत सज्जादा नशीन है। सज्जादा नशीन आबेदीन लंबे समय से दरगाह दीवान भी हैं। उन्होंने एक ही समय तीन तलाक पर सवाल उठाया और मुसलमानों से बीफ त्यागने की अपील की थी।
गाय जो है उनकी आस्था का सवाल है, इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हम गाय का गोश्त नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ये है, मैं अपने घर से शुरू करता हूँ ये कि मेरे जितने मेहमान आते हैं, अव्वल तो हमारे यहाँ खाया नहीं जाता गोश्त गाय का, और जितने मेहमान वगैरह आते हैं वो अगर उसको बनाते हैं यहाँ पर, तो मैं ये पाबंदी के साथ आपसे वादा करता हूँ कि गौ का गोश्त जो है बिल्कुल पाबंदी लगाता हूँ।
दरगाह दीवान के परिजनों का कहना है कि आलिमी के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। दरगाह दीवान आबेदीन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सैयद नसीरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। दरगाह दीवान के हाल के बयानों का किसी ने स्वागत किया तो किसी ने आपत्ति की। जमायत इस्लामी के मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी कहते हैं,
मुसलमानों की इमेज खराब हो जाएगी और ऐसा लोगों को लगेगा कि मुसलमान ही तो हैं जो गोश्त गाय का खाते हैं। बड़ी विडंबना है कि उन्होंने ऐसी बात कही, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने इससे सारे मुसलमानों को घरे में खड़ा कर दिया है, इससे माहौल अच्छा नहीं होगा बल्कि माहौल बिगड़ेगा।
गरीब नवाज के आस्ताने में कहीं दुआ के लिए उठते हाथ हैं तो कहीं कव्वाली के बोल, इन सब के बीच विवाद के स्वर भी आते हैं, लेकिन अकीदतमंदों की भीड़ मोहब्बत का पैगाम सुनकर आगे बढ़ जाती है। नारायण बारेट, जयपुर, राजस्थान।
एक तरफ कहा जाता है कि रंग से क्या होता है, दिल अच्छा होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ समय समय पर हमें रंग को लेकर होने वाले भेदभाव और हिंसा के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्ला खान आज रंग और नस्ल पर अपने अंदाज में टिप्पणी कर रहे हैं।
काली, शिव जी महाराज, कृष्ण जी, भले कोई कितना भी नीला कर दे पर हैं तो काले, मजनू की लैला काली। रजिया सुल्तान का किस्सा छिड़े और उसके हबशी गुलाम याकूत का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। कारी बदरिया देख के हम खुश हो जाते हैं और भीगने से पहले ही भीग जाते हैं। काली जुल्फें, कारे नैन, काली कटारा भवें, देखी नहीं और दिल चपरकट्टू हुआ नहीं। नज़र न लग जाए, काला टीका लगा लो। जहाँ तक मुसलमानों का मामला है तो अच्छे मौज़न की कसौटी ये है कि उसकी अज़ान सुन के रसूलल्लाह के सहाबी हज़रत बिलाल हबशी की अज़ान याद आ जाए। वो अलग बात कि अरबों ने हबशियों को ग़ुलाम बना बना के हिंदुस्तान तक बेच डाला। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला तजर्बा दक्षिणी अफ्रीका की गोरी मार से हल्कान कालों के साथ मिलकर ही तो किया। कालों की जमात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी का क्या मकाम है, इसकी गवाही नेल्सन मंडेला कई बार दे चुके, और नेल्सन मंडेला की भारत में क्या कदर है इसका सबूत नई दिल्ली का नेल्सन मंडेला मार्ग है। जाने कितनों को याद है कि लाल चिट्टे जवाहरलाल नेहरू ने घाना को आज़ादी दिलाने वाले काले क्वामे नक्रुमा को अपना भाई बना रखा था। मगर मेरे इन सब उदाहरणों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान झगड़े से बिल्कुल अलग अंदर से हम सब जातिवादक हैं, रेसिस्ट हैं। काला कलोटा बैंगन लोटा, ये इस उपमहाद्वीप के हर बच्चे को होश संभालते ही रट जाता है। जब यही बच्चा जवान होता है तो उसके लिए चांद सी बहू तलाश की जाती है, उसकी सांवली बहन की किस्मत को सामने नहीं तो पीठ पीछे कोसा जाता है। जो जितना काला उसकी बोली उतनी ही कम, जो जितनी गोरी उसकी बोली उतनी ही ज़्यादा। हम कभी क्लास में बैठ के ये थ्योरी चैलेंज नहीं करते कि मनुष्य की जन्मभूमि अफ्रीका है, 1,00,000 वर्ष पहले तक सबका रंग काला था। जैसे जैसे इंसानी नस्ल मुख्तलिफ इलाकों में फैलती चली गई, उसका रंग भी आबो हवा, खान पान और इलाके के हिसाब से बदलता चला गया। हम ये सुनते ज़रूर हैं कि सब इंसान बराबर हैं, भेदभाव सिर्फ नफ़रत को जन्म देता है, मगर अंदर से हम सबको यकीन है कि ये सब बस कहने सुनने की बातें हैं। कोई देवता, कोई अवतार, पैगंबर, कोई ऐतिहासिक कहानी, कोई बॉलीवुड गाना हमारी सोच नहीं बदल सका। कभी किसी से सुना, चल हट गोरे भुजंग वरना मुँह पे सफ़ेदा पुतवा के गधे पे बिठा दूंगा। इसके बाद जब ये खबर आती है कि पिछले वर्ष दिल्ली में किसी अफ्रीकी स्टूडेंट को मार मार के मार दिया गया और अब से चंद दिन पहले एक दर्जन अफ्रीकी स्टूडेंट्स जख्मी हो गए, तो कम से कम मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होता। जो हम अंदर से हैं वो कभी ना कभी तो बाहर आता ही है ना, इसमें बुरा क्या और अच्छा क्या, हम ऐसे हैं तो हैं।
ये थे पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्ला खान। और अब सुनिए साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस अंक में चर्चा डेविस कप में उज्बेकिस्तान पर भारत की जीत की और समीक्षा, क्या महेंद्र सिंह धोनी टीम मालिकों की नजर में साधारण हो गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत टेनिस से। लिएंडर पेस की गैर मौजूदगी या फिर कहें कि उन्हें टीम में जगह न मिलने के बावजूद भारत ने एशिया ओशिनिया ग्रुप एक के दूसरे दौर के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 4-1 से मात दी। बेंगलोर में आयोजित हुए इस मुकाबले में वैसे तो भारत ने शनिवार को ही युगल मुकाबला जीतने के साथ ही 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। कल पहले मैच में भारत के रामकुमार रामानाथन ने उज्बेकिस्तान के संजर फैजियो को 6-3, 6-2 से मात दी और भारत को 4-0 की बढ़त दिलाई। लेकिन पांचवें और आखिरी मैच में प्रजनेश गुणेश्वरन उज्बेकिस्तान के तैमूर इस्माइलोव से 7-5, 6-3 से हार गए। इस जीत के साथ ही भारत ने सितंबर में होने वाले विश्व ग्रुप प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। और अब समीक्षा आईपीएल में धोनी की गिरती साख की और कल की विजेता टीमों पर एक नजर। आईपीएल के सबसे कामयाब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सितारे इन दिनों जैसे गर्दिश में हैं। पहले तो इस बार का सीजन शुरू होने से पहले ही उनकी टीम राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के मालिकों ने उनकी कप्तानी छीन ली और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को दे दी। अब कप्तानी से हटा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हद तो हो गई है कि अब उनका मनोबल भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे खेल के मैदान में विरोधी खिलाड़ी या टीमें ऐसा करें तो ठीक है, लेकिन अगर टीम के मालिक ही ऐसा करें तो फिर बात जमती नहीं। ताजा मामला ये है कि टीम मालिक संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका ने धोनी के खिलाफ ट्वीट में मुंबई इंडियंस पर जीत के बाद स्टीव स्मिथ की तारीफ की और धोनी को कप्तानी से हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया। हर्ष गोयनका ने फिर से ट्वीट किया और लिखा, मनोज तिवारी, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे और डेन क्रिस्टियन की सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट है। उनके अनुसार दो मैचों के बाद धोनी की 17 की औसत और 73.91 की स्ट्राइक रेट सबसे खराब है। क्या ये सही है? वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन कहते हैं,
मुझे नहीं पता है कि उनका रिलेशनशिप एग्जैक्टली है विद द मैनेजमेंट इतना बुरा है या अच्छा है, या ये जो हम सोशल मीडिया में पढ़ते हैं वैसा ही है। कोई भी अगर ओनर हो, फ्रेंचाइज ओनर, बहुत ही ना समझ वाली बात है कि आप अपने ही सबसे शायद बड़े खिलाड़ी को इस तरह से ट्रीट करें।
वैसे धोनी किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 11 गेंदों पर 5 रन बनाकर स्वप्निल सिंह का शिकार बने। उस पर सितम ये कि उनकी टीम भी 6 विकेट से हार गई। इससे पहले खेले गए मैच में धोनी मुंबई के खिलाफ 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहे थे, जबकि कप्तान स्टीव स्मिथ ने नाबाद 84 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। तो क्या धोनी किसी दबाव में हैं? अयाज मेमन कहते हैं,
ये जरूर है कि इतने महान खिलाड़ी के लिए ऐसी बातें हो वो अच्छा नहीं है। धोनी को खुद अपने तौर पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके फैंस जो है उन्हें फर्क पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही उनके बल्ले से थोड़े रन आएंगे तो ये सब जो बातें हैं वो ऐसे ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी।
देखना है अब धोनी को लेकर आगे क्या कुछ होता है। उधर आईपीएल में कल खेले गए पहले मैच में कप्तान डेविड वार्नर के नाबाद 76 और मोजेस एंड्रिक्स के नाबाद 52 रन की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात लायंस को 9 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने जीत के लिए 136 रनों का लक्ष्य 15.3 ओवर में ही केवल 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वहीं कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले में नीतीश राणा के 50 और हार्दिक पांड्या के नाबाद 29 रन की मदद से मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए 179 रनों का लक्ष्य केवल एक गेंद शेष रहते 6 विकेट खोकर हासिल करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से मात दी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
मिस्र में ईसाइयों के चर्चों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में 45 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने देश में 3 महीनों के लिए आपातकाल लगा दिया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति से देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए लाए जा रहे कानून पर हस्ताक्षर न करने की अपील की है। चुनाव आयोग ने चेन्नई की आर के नगर सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनावों को मतदाताओं को पैसे बांटे जाने के सबूत मिलने के बाद रद्द कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संभाला तिलक राज भाटिया ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।